मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। 24 फरवरी 2016 के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों साथ ही मैं स्वागत करता हूं अपने उन 6 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की सितंबर अक्टूबर में होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान साथियों के नाम हैं विकास कुमार वर्मा, आप सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से हैं। यश पुरोहित, आप हाथरस से हैं। आकांक्षा तिवारी, आप दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं। पूर्णिमा देवी बहराइच उत्तर प्रदेश से हैं। हंस राज तेली बूंदी राजस्थान से हैं। और गोपाल साहू, आप दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं। तो विकास, यश, आकांक्षा, पूर्णिमा, हंसराज और गोपाल, आप सभी नौजवान साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों मैं एक बार फिर से व्यक्तिगत रूप से आमने सामने होकर स्वागत करने के लिए उत्सुक हूं अपने उन सभी नौजवान साथियों का जो अभी 28 फरवरी को होने वाली क्लासेस में आने के लिए लगभग लगभग तैयारी करने के दौर से गुजर रहे होंगे। मित्रों मैं एक छोटी सी सूचना दे दूं और वह कि जो भोपाल का जो मौसम है वो बड़ा सुहाना है। दिन में सूरज अगर तेज निकलता है तो आपको हल्की हल्की गर्मी हल्के हल्के गर्मी का एहसास होगा, लेकिन इतना भी नहीं कि आप परेशान हों। लेकिन शाम होने के बाद हल्की हल्की ठंड बढ़ने लगती है और रात तक आपको ऐसा लगने लगता है कि एक स्वेटर हो तो बेहतर है, और सुबह भी आपको लगभग लगभग उसी तरह की जरूरत महसूस होगी। लेकिन जैसे ही सूरज निकलता है वैसे ही मौसम में फिर से गर्माहट आनी शुरू हो जाती है और निसंदेह रूप से फिर आपको स्वेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात अलग है कि यदि आप स्वेटर पहन करके ही क्लास में आना चाहेंगे तो जहां आपकी क्लास लगनी है वो चूंकि एसी हॉल है इसलिए वहां अगर आप स्वेटर पहन करके भी आएंगे तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। मैं कुल मिलाकर जो कहना चाह रहा हूं वह यह मित्रों की एक हल्का स्वेटर आपके साथ होना ही चाहिए। मौसम में कभी कभी ये होता है बीच में बारिश हो जाती है और डेफिनेटली यदि बारिश हो गई तो उस दिन ठंड इतनी थोड़ी अधिक हो जाती है कि दिन में भी स्वेटर की जरूरत पड़ सकती है। आपको खासकर इस ठंड से बचने की व्यवस्था करनी ही चाहिए क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि रात में सुबह अति उत्साह में आकर आप इस ठंड की चपेट में आ जाएं, आपका गला पकड़ ले और फिर वो गला आपके फीवर में आपको जकड़ ले। तो मित्रों इसीलिए ठंड से बचाव के लिए आप थोड़ा सा इंतजाम रखें, एक थोड़े से ही इंतजाम की बात कर रहा हूं, आपको बहुत ज्यादा गर्म कपड़े लाद कर लाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आइए, आप सबकी बहुत व्यग्रता के साथ प्रतीक्षा है और नो डाउट कि मैं आप सभी से अपने इस ऑडियो डेली ऑडियो गाइडेंस के माध्यम से मिल रहा हूं, इसका अपना महत्व है, लेकिन जब व्यक्तिगत रूप से मुलाकात होगी तो उसका फिर अपना अलग महत्व होता है। इसे मैं कुछ इसी तरीके से लेता हूं जैसे साकार ब्रह्म की उपासना और निराकार ब्रह्म की उपासना। निराकार में ईश्वर दिखाई नहीं देता लेकिन आप बिल्कुल उपासना कर सकते हैं, जरूरत ही नहीं है साकार ब्रह्म की। और जब साकार होता है या कह लीजिए हम जब मूर्ति की पूजा करते हैं तो उससे भी ईश्वर आपको प्राप्त हो सकता है, बस उससे एक सहारा मिल जाता है, उसका इंपैक्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। और फिर जब लगातार बातें होंगी 90 घंटे तक हम इसी एक मुद्दे पर बातचीत करते रहेंगे कि कैसे तैयारी की जानी चाहिए, तैयारी करने के क्या मॉडल्स होंगे, आंसर कैसे लिखना चाहिए, किसी आर्टिकल्स को कैसे पढ़ा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए, क्योंकि उन सब के यहां प्रैक्टिकल्स भी होंगे तो डेफिनेटली वे चीजें थोड़ी सी अलग रूप में प्रभावी हो जाती हैं। तो मित्रों आज के लाइफ मैनेजमेंट में मैं कुछ ऐसे ही टॉपिक को लेकर चलना चाह रहा हूं जो ऐसे मैं खासकर वे स्टूडेंट जो अभी क्लास में आने वाले हैं उनके लिए भी उपयोगी हो सके। मैं समझ सकता हूं मित्रों आप सब जो आने वाले हैं वो अभी मतलब कह लीजिए कि दो दहाई उम्र पार कर चुके हैं, मतलब लगभग लगभग 20 साल से ऊपर के होंगे। और आप सबकी जो अगर मैं एवरेज एज निकालूं तो लगभग लगभग 23 साल के आसपास की करीब बैठेगी। हम लोगों का अनुभव लगभग लगभग यही रहा है। डेफिनेटली पता नहीं आप सब कहां कहां से आ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान से स्टूडेंट आ रहे हैं और आने वालों में गर्ल्स भी हैं, लड़कियां भी हैं। निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं आप सबके पेरेंट्स के प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा पूरे एकेडमी की ओर से कि उन्होंने एकेडमी पर विश्वास करते हुए आप लोगों को इस बात की इजाजत दी कि वे यहां आए और आकर 15 दिन की क्लास अटेंड करें, और उन्होंने कि एकेडमी से कुछ मिलेगा इस भरोसे से आपको उस तरह की आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई है। तो निश्चित रूप से सारे के सभी पेरेंट्स इसके लिए हमारी दृष्टि में अभिनंदन के पात्र हैं। मित्रों, मैं जानता हूं कि ये जो उम्र होती है, कुछ लोगों में तो बहुत ऊर्जा होती है और अंदर से बड़े ठोस भी होते हैं, उनमें वैचारिक सुदृढ़ता बहुत ज्यादा होती है, तो उनके दिल की धड़कनों में तो कुछ नहीं हो रहा होगा। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स मैंने पाया है कि ऐसे होते हैं जो इससे पहले अपने गांव से नहीं निकले होते, अपने शहर से नहीं निकले होते, अपने कस्बे से नहीं निकले होते, या अगर निकले भी होते हैं तो जब भी यात्रा की बात आती है तो दिल में कुछ कुछ होने लगता है। ये जो कुछ कुछ होने लगता है, सच पूछिए तो ये वैसे एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। जब भी हम कुछ नया करने जाते हैं तो ये कुछ कुछ होना भी दिल में कुछ कुछ नए का ही होना है। वो उस नएपन के साथ अपना तालमेल बैठाता है। ठीक वैसे ही जैसे कि अगर आप सीढ़ियां चढ़ने लगिए या दौड़ लगाने लगिए तो देखिए आपकी जो सांसें हैं, आपका ये जो कर्म है, आपने जो वर्क किया है, आपने जो लेबर किया है, उसको उसके साथ तालमेल बैठाने के लिहाज से तेजी से धड़कने लगेगा ताकि आपके काम के साथ उसका तालमेल बैठ सके। तो ये एक वैचारिक तालमेल है कि आप विचारों के स्तर पे सोच रहे हैं कि हम वहां जाएंगे तो रास्ते में ये तकलीफ होगी, फिर वहां से हम जहां रुके हैं वहां कैसे पहुंचेंगे, फिर वहां पता नहीं किस तरह का इंतजाम होगा, और अरे बाप रे 15 दिन वहां रहना होगा, और यहां की तो ये सुविधाएं हैं, क्योंकि आदमी एक कंफर्ट जोन में रहने लगता है, चाहे वहां कितनी भी असुविधाएं क्यों ना हो, फिर जब वो कंफर्ट जोन टूटता है तो वास्तव में तकलीफ होती ही है। मित्रों, आप सभी इन स्थितियों से गुजर रहे होंगे। मैं इसे इस रूप में नाम देना चाहूंगा कि आने वाले संकटों की धुकधुकी को आप सब झेल रहे होंगे, राइट? अब मैं इसका सामान्यीकरण करता हूं, जनरलाइजेशन करता हूं, जो हर एक के साथ होता है, चाहे वो स्टूडेंट हों, चाहे वो पेरेंट्स हों, या हमारी उम्र कितनी भी अधिक क्यों ना हो जाए, हम कितने भी अनुभवी क्यों ना हो जाए, लेकिन सबके साथ ये होता है। तो दोस्तों, अब इसको हम जनरलाइज करके बात करते हैं। जीवन का सिद्धांत है, सिद्धांत यह है मित्रों कि छोड़े बिना कुछ नहीं मिलता। जब तक आप अपने वर्तमान से मुक्त नहीं होंगे तब तक भविष्य आपसे हाथ मिलाने के लिए या आपके गले लगने के लिए आगे नहीं आएगा। दोस्तों, अब पतझड़ का दौर शुरू होना है। आप पेड़ों को देख रहे होंगे कि पेड़ों ने धीरे धीरे अपने पत्ते गिराने शुरू कर दिए हैं। क्यों शुरू किए हैं? अगर ये पत्ते नहीं गिरेंगे तो मानकर चलिए कि नए पत्ते भी नहीं आएंगे, और पत्ते गिर रहे हैं, नए पत्ते आ रहे हैं, इसी प्रोसेस के तहत उस वृक्ष की भी जिंदगी लंबी होती चली जा रही है। और जिस दिन ये वृक्ष पत्ते गिराने बंद कर दें, आपको चिंतित हो जाना चाहिए कि अब इसको कुछ बीमारी हो गई है, अब ये आपका ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, आपके घर के सामने का हिस्सा अब सुनसान होने वाला है, ये वृक्ष अब आपको छोड़कर चला जाएगा। दोस्तों, ये जीवन का सिद्धांत है जो मैंने प्रकृति से लिया है। छोड़े बिना कुछ नहीं मिलता। जब तक आप अपने घर को नहीं छोड़ेंगे, अपनी सीमाओं को नहीं तोड़ेंगे, अपने पुराने विचारों को नहीं छोड़ेंगे, अपने पुराने कपड़ों को नहीं बदलेंगे, तब तक आप नए को धारण कैसे कर सकते हैं? पुराने के ऊपर अगर आप नए को धारण करेंगे तो वो फिट नहीं बैठेगा। तो छोड़ने की हिम्मत दिखाई जानी चाहिए। इसलिए भी दोस्तों कि मानकर चलिए कि जो नया है उसी में विस्तार है, पुराने में हमेशा ठहराव होता है। हमेशा ठहराव होता है। अगर आप अपने ठहराव से खुश हैं तो कोई आपत्ति नहीं, आप लाइफ को एंजॉय कीजिए, लेकिन आप फैलेंगे नहीं, आप बहेंगे नहीं। फैलने और बहने के लिए तो आपको नए नए की तलाश करनी पड़ेगी और अपने में नया नया कुछ जोड़ते चले जाना होगा। दोस्तों, जब हम पुराने को छोड़ते हैं तो डेफिनेटली दुख होता है, किसी को भी दुख होता है, आपको भी हो रहा होगा। और अभी मैं स्टूडेंट्स के संदर्भ में बात करूं तो उनको हो रहा होगा जो अब 15 दिन के लिए अपने घर को छोड़ेंगे, अपने गांव, अपने नगर शहर को छोड़ेंगे, अपने लोगों को छोड़ेंगे, वो दुख हो रहा होगा। अपने अभी जो जीवन की एक पद्धति बन गई है उस पद्धति को भी छोड़ेंगे, निश्चित रूप से उसका दुख होगा। सबको होता है, याद रखिए सबको होता है, कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता। लेकिन वो करते क्या है, वो इस सिद्धांत को भी जानते हैं कि जो फिर नया कुछ पाने का सुख होता है वो इतना बड़ा होता है कि ये जो पुराने को छोड़ने का दुख है वो दुख नहीं रह जाता। यानी कि आप पाने के सुख को इतना बड़ा बना दीजिए कि उसके सामने खोने का जो दुख है वो बौना पड़ जाए। यानी कि आपने खोया 5 है और पाया 15 है, ऑटोमेटिकली वो जो दुख है वो कम हो जाएगा। और मजेदार बात है कि अब आपको 15 मिल गया है, अब ये 15 भी कुछ दिनों में पुराना पड़ेगा, ये भी पुराना पड़ेगा। और फिर जब आप नए की तरफ जाएंगे तो ध्यान दीजिए कि अब आपके जो नए की जो वैल्यू है, जो नए का वजन है, वो 15 से अधिक होना चाहिए, वो 20 होगा, तब आप इस 15 को छोड़ पाएंगे। और इस तरीके से आप 20 को पहुंच जाएंगे। लेकिन जिसने हिम्मत नहीं दिखाई और पुराने को नहीं छोड़ सका, याद रखिए कि वो अभी भी 5 में ही है। सोचने से कुछ नहीं होगा कि हमको 15 चाहिए या 150 चाहिए, कुछ भी नहीं होगा, उसके लिए आपको एक्शन में आना पड़ेगा। मित्रों, अनावश्यक रूप से जब भी हम किसी नए को पाना चाहते हैं, उसकी खोज में निकलते हैं, यात्रा की शुरुआत करते हैं, तो हमारे दिमाग में पता नहीं क्या क्या अनावश्यक आशंकाएं घर करती रहती हैं। पता नहीं क्या क्या घर करती रहेंगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कहीं बीमार ना पड़ जाए, कहीं फलाना ये ना हो जाए। दोस्तों, इस तरह की अनावश्यक आशंकाओं को अपनी चेतना पर अधिकार मत जमाने दीजिए और हमेशा यह सोचिए कि जब होगा तब देखेंगे, सामने आने दो, जब सामने आ जाएगा तब देखा जाएगा, अभी तो नहीं है ना। और आपने अभी तक जीवन की जो यात्रा की है उसके बारे में थोड़ा सा सोच करके देखिए, क्या आपको लगता है कि अभी तक ऐसा आपके साथ कुछ नहीं हुआ है, सारी चीजें बड़े स्मूथ तरीके से चलती रही हैं? और अगर सब चीजें स्मूथ तरीके से चल रही होंगी फिर आपको यह भी मानना चाहिए कि फिर आपने कुछ नहीं किया है, इस बात का प्रमाण है कि आपने कुछ नहीं किया है। और अगर कुछ भी करने की कोशिश की है तो वो स्मूथ तरीके से नहीं हुआ है। तो जब आपने उन सब को जीत लिया, उन सब पर पार पा लिया, तो सोचिए कि मैं आगे भी करता रहूंगा, आने दो, कोई बात नहीं, जब आएगा तब देखा जाएगा। और याद रखिए, ये जो आएगा और तब देखा जाएगा, ये एक ऐसा काम नहीं है जो केवल अभी तक सीमित है, यह दोस्तों एक ऐसा सिलसिला है जो कभी थमता नहीं है। अब जब तक जिंदगी है तब तक यह सिलसिला जारी रहेगा। इसलिए मित्रों, एक बार फिर से मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा, जो स्टूडेंट भोपाल में आने की तैयारी कर रहे हैं, आप सब अपने अपने दिल की धड़कनों का मुआयजा कीजिए, उन पर नियंत्रण रखने की कोशिश कीजिए। और उन पर नियंत्रण रखने का उपाय ये नहीं है कि आप अपने सीने को किसी मोटी रस्सी से बांध दें ताकि वो धड़कना बंद कर दे, उसका उपाय सिर्फ यही है कि आप अपने विचारों की धड़कन को सही कर लें, उनको सही दिशा दें। जो बातें अभी मैंने एक दो आपसे शेयर की हैं उनको अपने दिमाग में लाएं और एक बार फिर से कि पाने के सुख को इतना विशाल बना दें, इतना विराट बना दें कि उसके सामने जो खोने का दुख है वो बिल्कुल तुच्छ दिखाई देने लगे, ऐसा दिखाई देने लगे कि खोने में भी सुख का एहसास होने लगे और आपके अंदर एक व्यग्रता पैदा हो जाए कि नहीं नहीं, जल्दी से जल्दी जाना है, वो दिन जल्दी से जल्दी आए। और आप ऐसा करते हैं, बहुत से मायनों में आप ऐसा करते हैं, अब मैं कहना नहीं चाहूंगा कि किन मायनों में आप ऐसा करते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि किन मायनों में आप ऐसा करते हैं कि हे भगवान जल्दी से इतने बच जाएं। तो मित्रों, बस उसी चेतना को यहां अप्लाई करना है, यहां ही नहीं बल्कि हर उस जगह पर अप्लाई करना है जहां आपको इस तरह की चेतना की जरूरत होती है। तो मित्रों, अब मैं आता हूं इसके बाद AIR न्यूज पर। दोस्तों, कल के AIR न्यूज में सच पूछे तो चर्चा करने के लिए कुछ बहुत विशेष बातें नहीं है। एक दो छोटी छोटी खबरें थी, उनकी मैं आपको जानकारी भर दे देता हूं, क्योंकि आपने न्यूज जब हम सुनते हैं तो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि वो बिल्कुल अर्थहीन हो। कोई कोई न्यूज बड़ी, किसी दिन की न्यूज बड़ी गरिष्ठ हो जाती है जिसमें हमें ढेर सारे इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं, इंफॉर्मेशन इन द सेंस ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन की दृष्टि से, अदरवाइज तो इंफॉर्मेशन मिलती ही है। एक खबर जो पहली थी और जो बड़ी लंबी भी चली, आपको मालूम है कि राष्ट्रपति जी का कल अभिभाषण हुआ, उसके साथ ही संसद का बजट अधिवेशन शुरू हो गया है और आज से संसद के बजट अधिवेशन की शुरुआत हो गई है। इसमें देखिए, जो सबसे बड़ा जोर था सिविल सर्विस के लिहाज से अगर हम देखें तो इस बात पर जोर था कि संसद चलनी चाहिए। आप देख रहे हैं, इससे पहले भी मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं, लेकिन मैं इसे रिपीट जानबूझकर कर रहा हूं ताकि आपको ये मालूम हो सके कि कोई घटना या कोई बात, कोई स्टेटमेंट महत्वपूर्ण क्यों बनती है। बट नेचुरल है कि वो महत्वपूर्ण तभी बनेगी जब उस पर बार बार बात हो, तभी वो महत्वपूर्ण बनती है। और संसद चलनी चाहिए, यह कुछ ऐसी घटना है या ऐसी बात है, ऐसी अपेक्षा है कि पिछले लगभग दो संसदीय सत्रों से में हम देख रहे हैं कि संसद अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है। और जब हम संसद की बात कर रहे हैं तो बेसिकली बात आती है राज्यसभा पर, क्योंकि राज्यसभा की बैठकें उतनी फ्रूटफुल नहीं हो पा रही हैं, विधेयक पर डिस्कशन नहीं हो पा रहा है, विधेयक पारित नहीं हो पा रहे हैं। और ऐसा क्यों है आप जानते हैं, क्योंकि राज्यसभा में चूंकि अभी वर्तमान जो सरकार है उसका बहुमत नहीं है, इसलिए किसी भी विधेयक को उसके लिए पारित कराना राज्यसभा से बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मित्रों, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जी की यह अपील बिल्कुल जायज है कि संसद चूंकि एक जनप्रतिनिधियों का एक फोरम है, यानी कि जनता का फोरम है, और वहां विचार विमर्श किया ही जाना चाहिए। और आपने देखा कि फिर राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद प्रधानमंत्री जी ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है बातचीत के दौरान, वो यही कहा है कि भाई बातचीत से ही जो लोकतंत्र है वो मजबूत होता है और जो संसद है वो गहन विचार विमर्श का ही स्थल है। मित्रों, इसके माध्यम से खासकर अगर आप संसद को विचार विमर्श का एक मंच मान करके चलेंगे तो आप देखेंगे कि पूरी की पूरी जो लोकतांत्रिक प्रणाली है वो लोकतांत्रिक प्रणाली समझ में आ जाएगी। डेली RDO में इतना अवसर नहीं होता है कि मैं उसकी लोकतांत्रिक प्रणाली के बारे में आपको बहुत डिटेल में बता सकूं, इसके लिए थोड़े से लंबे वक्त की जरूरत होती है। लेकिन यहां जो क्लासेस होंगी उसमें हम लोग इन बातों पर काफी डिस्कस करेंगे कि इसी से कैसे पूरी की पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली इमर्ज होती है। वैसे भी मित्रों, मैं आप लोगों को एक बताना चाहूंगा कि अगर आप फ्रांस की क्रांति को पढ़ेंगे तो आप देखिए कि जब फ्रांस में बहुत ज्यादा संकट होने लगा, राजनीतिक, संवैधानिक, सामाजिक विभाजन बहुत ज्यादा बढ़ गया, आर्थिक बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो गई, तो सबने ये सोचा कि भाई जनरल स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी चाहिए। उसकी मीटिंग आई, मीटिंग में मतभेद हो गए और पता लगा कि वही मीटिंग नेशनल असेंबली में कन्वर्ट हो गई और वही फ्रांस की क्रांति का आधार बन गया। यानी कि जैसे ही लोगों को इकट्ठा किया गया, अलग अलग वर्ग के लोगों को, और बातचीत करने के लिए बुलाया गया, वैसे ही उस बातचीत ने एक क्रांति का रूप ले लिया और राजतंत्र खत्म हो गया और वहां फ्रांस की क्रांति संपन्न हो गई। ये विचार विमर्श की ताकत होती है, बात क्रांति की नहीं है। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया तो खुद में एक क्रांति की संतान होती है, भले ही वो स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में क्रांति रही हो या और किसी भी रूप की क्रांति रही हो। तो जब हमें एक ऐसी एक राजनीतिक प्रणाली मिल चुकी है जहां पर विचार विमर्श किया जाना, विचार विमर्श होना न केवल संवैधानिक बाध्यता ही है बल्कि सच पूछिए तो एक नागरिक कर्तव्य भी है, हमारे पास वो फोरम है। तो अगर विचार विमर्श के दौरान फ्रांस जैसी क्रांति घटित हो सकती है तो क्या विचार विमर्श के दौरान हम सामाजिक परिवर्तन वाले इश्यूज पैदा नहीं कर सकते? किए जा सकते हैं, बशर्ते कि वो जो विचार विमर्श हो वो बहुत हेल्दी हो, बहुत ही राष्ट्रीय हित में किए गए हों और अपने निजी हितों से उठकर, जिसे हम कहते हैं अपनी राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर उनको देखा और समझा जाए और तभी सच पूछिए तो लोकतांत्रिक प्रणाली सच्ची आत्मा के तहत काम भी करती है, अदरवाइज तो फिर ये प्रणाली भी एक प्रकार से किसी भी हालत में येन केन प्रकारेण राजनीतिक सत्ता को हथियाने का माध्यम मात्र बनकर रह जाती है। तो मित्रों, यहां मैंने आपको थोड़ा सा लोकतंत्र का और संसद का एक अलग रूप, एक सैद्धांतिक पक्ष रखने की कोशिश की है ताकि आप किताब से हटकर थोड़े अलग दृष्टि से भी इस तथ्य पर विचार कर सकें, क्योंकि यदि आपको निबंध लिखने के लिए दिया जाता है ऐसे इश्यूज पर, तो फिर वहां आप संविधान को लेकर के निबंध नहीं लिख सकते, फिर तो आप उसके इसी तरह की फिलॉसफी को ही अपना आधार बना करके अच्छा निबंध लिख सकेंगे। मित्रों, जो दूसरी खबर थी वो छोटी सी खबर ही थी, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए वो कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं न्यायमूर्ति दत्तू साहब, उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। यहां मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए। अगर आप 2013-14 के क्वेश्चंस पेपर उठा करके देखेंगे तो उसमें से एक वर्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया है, और प्रश्न इस रूप में पूछा गया है कि अगर दूसरी संस्थाएं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की मदद नहीं करें तो फिर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भी एक तरीके से अप्रभावी जैसा हो जाता है। बहुत जरूरी है कि दूसरे एजेंसीज जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से जुड़ी हुई हैं या जिन पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की कार्यप्रणाली निर्भर करती है वो भी सक्रिय योगदान करें। और वैसे भी मित्रों, आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे न केवल भारत में ही बल्कि पूरी की पूरी दुनिया में जो मानव अधिकार की बातें बहुत जोर शोर से उठाई जाने लगी हैं। अभी भी आप देखेंगे कि जब इधर मध्य एशिया और पश्चिम एशिया से जब शरणार्थी यूरोप की तरफ जाने लगे, आपको ध्यान होगा 4-5 महीने पहले ये इश्यू बहुत बहुत तेजी से बढ़ा था, 3-4 महीने पहले, उस समय भी जो पूरा विश्व जब शरणार्थियों के बारे में बात करता था तो मानव अधिकार आयोग मानव अधिकारों को ही केंद्र में रखकर बात करता था, और उसी उन्हीं बातचीत के तहत आप कह लीजिए कि शरणार्थियों को वहां जगह मिली भी। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पर आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए और यह तैयारी अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में भी की जानी चाहिए। मित्रों, एक खबर और थी जो छोटी सी थी कि प्रधानमंत्री आईएएस प्रोबेशनर्स से मिले। ये एक सिस्टम ही है कि जो आईएएस प्रोबेशनर्स होते हैं वो जब वहां अपनी मसूरी की ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं तो फिर प्रधानमंत्री जी से आकर के सौजन्य भेंट करते हैं, और उसमें प्रधानमंत्री जी होते हैं और एक उनके मंत्री होते हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के मंत्री होते हैं वो होते हैं, और फिर बातचीत होती है, और उसमें सच पूछे तो प्रधानमंत्री जी अपना एक पर्सपेक्टिव देते हैं कि जो हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है, खासकर जो आईएएस ऑफिसर्स हैं डेफिनेटली वो टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेसी में एंटर करते हैं, और आगे चल करके उनके हाथों में ही ज्यादातर निर्णय लेने और प्रशासन के अधिकार होते हैं। ऐसे में वो अपना एक दृष्टिकोण रखते हैं कि देश उनसे क्या उम्मीद करता है, कैसे उन्हें अपने कामों को अंजाम देना चाहिए, हमारी क्या प्राथमिकताएं हैं, वो प्रधानमंत्री जी ने उन्हें डिटेल में बताई होगी, न्यूज में वो थोड़ा सा लिया है, लेकिन उस पूरे जो न्यूज में जो लिया गया उसकी अपनी एक वैल्यू होती है। वैल्यू होने का मतलब यह है कि उस पर वो ज्यादा जोर देना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा होगा कि नहीं न्यूज में ऐसा लो, लेकिन जो न्यूज बनाते हैं वो इतने मैच्योर होते हैं और राष्ट्रीय दृष्टिकोण को समझते हैं कि वो वहां से फिर वो चीजें उठाते हैं। तो आपने देखा कि जो मेंशन किया गया था वो पूर्वोत्तर भारत के विकास की बात उसमें कही गई थी। अब मैं आपको शुरू से ही कहता रहा हूं कि जो नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए ये सरकार बहुत उत्सुक है, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए तरह तरह की योजनाएं आ रही हैं। लगातार मैं इस पर बातें आपसे करता रहा हूं और मैंने आपको सजेस्ट भी किया था कि प्लीज आप सब इसके लिए एक अलग से पेज बना लें, और जैसे ही कोई डेवलपमेंट उस फील्ड में होता है, उस टॉपिक पर होता है, तो आप उसे नोट कर लें, क्योंकि इसी तरीके से आप सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हैं। तो मित्रों, जो नॉर्थ ईस्ट का जो टॉपिक है वो मुझे लगता है कि लगातार इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। दोस्तों, AIR न्यूज में बस इतनी ही बातें थी। एक और न्यूज थी जो कल के चैनल्स पर थी, आज अखबारों में भी है, लेकिन वो न्यूज में शामिल रात की न्यूज में नहीं थी, और वो ये है कि सीरिया में खासकर जो आईएसआईएस के खिलाफ जो अटैक कर रहे थे, खासकर रूस और अमेरिका दोनों, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों अलग अलग इशू को लेकर के चल रहे थे, दोनों में बहुत मतभेद थे, मतलब ऐसा नहीं कि दोनों मिलकर किसी आईएसआईएस पर ही अटैक कर रहे थे, दोनों के एक तरीके से राजनीतिक इंटरेस्ट के हिसाब से या राजनीतिक समझ के हिसाब से दोनों अलग अलग खेमे में चले गए थे, जिसकी वजह से सीरिया में जो आईएसआईएस का खात्मा भी है बड़ा संदेहास्पद हो रहा था। तो उस रूप में रूस और अमेरिका दोनों ने एक समझौता किया है सीज फायर का कि वहां युद्ध विराम लागू कर दिया है, लेकिन उस युद्ध विराम का मतलब ये नहीं है कि आईएसआईएस के ठिकानों पर हमले नहीं होंगे। आईएसआईएस के जहां भी ठिकाने दिखेंगे, ऐसे आतंकवादी दिखेंगे, वहां दोनों देश मिलकर हमला करेंगे। लेकिन इससे एक बात तो सिद्ध हो रही है कि दोनों देशों को या दुनिया को कह लीजिए, ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है कि यदि आतंकवादियों की पहचान पर वो मतभेद रखेंगे कि ये है वो नहीं है, ये अच्छा आतंकवाद है ये बुरा आतंकवाद है, जिसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोल चुके हैं कि आतंकवाद अच्छा बुरा नहीं होता, आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद होता है। तो जब तक ये मतैक्य नहीं होगा, तब तक दुनिया में जो इतनी तेजी से आतंकवाद बढ़ता चला जा रहा है उसका हल नहीं निकाला जा सकता। मित्रों, नीरजा फिल्म में आपने देखा कि किस तरीके से आतंकवाद काम अपना करता है, वो आपने एक छोटा सा नमूना उसमें देखा है। तो ये एक अच्छी खबर है। अब देख, मुझे लगता है कि इस पर आगे चलकर डेफिनेटली एडिटोरियल कमेंट्स भी आने चाहिए और एडिटोरियल आर्टिकल भी लिखे जाएंगे। मित्रों, रेडियो न्यूज के बारे में बस इतना ही। अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर। फ्रेंड्स, मुझे आज आप इस बात के लिए माफ कीजिएगा कि मैं आप लोगों को आज काफी क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं और काफी समय मैं आपका इन क्लिपिंग्स के माध्यम से लूंगा, ऑडियो में नहीं, आपका अपना जो समय होगा काफी समय आपको इसमें लगाना पड़ेगा। मित्रों, इसमें एक जो सबसे अच्छी क्लिपिंग्स है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा और चाहूंगा कि इस पर आप बहुत ध्यान से पढ़ें, केवल ध्यान से पढ़ें ही नहीं बल्कि इस पर बहुत अच्छे तरीके से विचार भी करें, और वह है दैनिक जागरण में राजकिशोर जी का छपा हुआ लेख जातीय विषमता का निदान। राजकिशोर जी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, मतलब बड़े अच्छे, मुझसे खैर बहुत सीनियर हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं और बड़े बड़े प्रतिष्ठित जर्नलिस्ट हैं, जो मतलब हिंदी में जो बहुत अच्छा जो लोग लिख रहे हैं उसमें से राजकिशोर जी का नाम आता है, क्योंकि उनके पास अपनी एक सोच है, एक यथार्थवादी वैज्ञानिक विचार है और उसको पैमाना बना करके वो चीजें लिखते हैं। तो जब भी आपको राजकिशोर जी का लेख पढ़ने को मिले आप उसे डेफिनेटली पढ़ें, चाहे वो किसी भी इश्यू पर क्यों ना हो, क्योंकि उनके लेख डेफिनेटली आपको सोचने की एक नई दिशा देंगे, और अगर मान लीजिए कि आप वैसा ही सोच रहे थे तो उसको वो गहराई दे देंगे, मतलब वो आपको विस्तार भी देंगे और गहराई भी देंगे। इसमें देखिए, खासकर अभी जो हरियाणा में जो जाट आंदोलन हुआ है उसको केंद्र में रखते हुए उन्होंने हमारे यहां की एक जो जाति की परंपरा कहें या समझ में नहीं आता है, जाति की जो विषमता रही है, जाति की जो विडंबना रही है, उसके ऊपर एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है। ये जो आर्टिकल है ये सोशियोलॉजी के स्टूडेंट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और शायद सोशियोलॉजी के स्टूडेंट इसको पढ़ेंगे तो उन्हें कोई बहुत नई चीज न भी मिले, लेकिन जो जनरल स्टडीज की तैयारी कर रहे हैं, जो दूसरे स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं जिनका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट नहीं रहा है, उनको चाहिए कि वो स्पेशली इस आर्टिकल पर थोड़ा सा वक्त लगाएं और इसकी कॉपी, इसकी फोटोकॉपी अब करा करके अपने पास रख भी लें। आपके मेंस में के फर्स्ट पेपर में सोसाइटी एक टॉपिक है और उस पर बकायदे काफी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है मित्रों कि हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय जो जहां आपके वेरुमुला के साथ जो घटना घटी, जिन्होंने आत्महत्या किया, वो स्टूडेंट थे, उनको लेकर के जाति की बात आई। अब हरियाणा में जो जाट आंदोलन हो रहा है उसको लेकर के जाति की बात आ रही है। आंध्र प्रदेश में कामू समुदाय ने किया था, वो भी एक जाति के आधार पर मांग कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जाति को लेकर के एक बड़ी विचित्र सी स्थिति पैदा हो रही है, मतलब उच्च जाति के लोग, उच्च जाति ने किया संपन्न वर्ग किस तरीके से अपने को अब निम्न जाति में ले जा, निम्न वर्ग में ले जाना चाह रहे ताकि उसको आरक्षण मिल सके। मतलब आप कह लीजिए कि उल्टे बांस बरेली भेजी जा रही है, मतलब लोग पहले हम सांस्कृतिकरण, सोशियोलॉजी का एक हिस्सा संस्कृताइजेशन, जिसमें कि निम्न जातियां अपने से उच्च जातियों को देख करके उनकी संस्कृति या ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। हम संस्कृति की बात तो यहां नहीं देख रहे हैं कि हम अधोगामी उसकी दिशा देख रहे हैं, लेकिन आरक्षण के नाम पर वो कह रहे हैं कि हमें ये माना जाए, चाहे आप हमें पिछड़ा वर्ग मान लीजिए, चाहे पिछड़ी जाति मान लीजिए, लेकिन हमें आरक्षण मिले। इसके पीछे जो इनका केंद्रीय तर्क है मित्र राजकिशोर जी का, वो ये है कि जाति प्रथा को एक ही आधार पर समाप्त किया जा सकता है, और वह आर्थिक आधार। यदि जिन जातियों को हमें ऊपर ले जाना है उन्हें हम आर्थिक संबल प्रदान कर दें तो समाज में उन्हें स्वीकृति ऑटोमेटिक मिल जाएगी। यहां इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जो राम मनोहर लोहिया जी का सिद्धांत था। राम मनोहर लोहिया ने कहा कि जो सबसे निम्न जात काम माने जाते हैं, काम से जोड़ा उन्होंने कि जो सबसे घटिया काम माने जाते हैं, उनका जो पारिश्रमिक है आप बढ़ा दीजिए 100 गुना 1000 गुना बढ़ा दीजिए और देखिए कि कैसे पूरी की पूरी उस काम को करने वाली जो जातियां हैं वो समाज में सम्मानजनक मानी जाने लगेंगी। मित्र इसके बारे में सोच करके देखिए। जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण बताऊं, इसे आप बिल्कुल अन्यथा न ले। जैसे मान लीजिए कि पता नहीं होटल में जो आपको खाना खिला रहा है, कि ढाबे वाबे में मान लीजिए जो आपको खाना खिला रहा है, खाना खाने के बाद आपके बर्तन उठा करके ले जाता है, उनके प्रति आप क्या धारणा रखते हैं, वो एक वर्ग हो गया, उनको बेचारों को मिल जाता होगा 2-4, 5-7 हजार रुपए महीने में। इसके बाद फिर आप एक बड़े होटल में जाइए, थोड़े से बड़े होटल में, वहां भी वो खाना खिला रहा है और वही बर्तन वगैरह उठा करके ले जा रहा है, उसके ड्रेस अच्छे हैं, इतना ही फर्क है, लेकिन काम तो वही कर रहा है, जूठे आपको खाना ला करके दे रहा है और जूठे बर्तन उठा करके ले जा रहा है, उसकी सैलरी और उससे ज्यादा होगी। उसे आप किस निगाह से देखते हैं? उसी जाति का है वो, मान लेते हैं हम। और फिर मान लीजिए कि उसी जाति के लड़के और लड़कियां एयर हॉस्टेस के रूप में या एयर अटेंडेंट के रूप में फ्लाइट में है, फ्लाइट में भी वो यही काम कर रहे हैं, आपको खाना दे रहे हैं, आपके बर्तन उठा करके ले जा रहे हैं, आप जो चाहते हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब आपके लिए वो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं वहां। उन्हें आप किस रूप में देखते हैं? देखिए प्रोफेशन एक ही है, प्रोफेशन के रूप में देखेंगे तो खाना परसना और आपको उससे संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराना और फिर आपके जूठे बर्तन उठा करके ले जाना। लेकिन अब आप निगाह देखिए कि इन तीनों प्रोफेशन को आप किन निगाहों से देखते हैं। बस ये वाकई में जो राजकिशोर जी ने यहां जो एक हल दिया है जाति प्रथा, जाति विषमता को मिटाने का, उससे मैं बिल्कुल मतलब मैं तो खासकर उसी विचारधारा में अपने को पाता हूं। तो मित्रों आप इसे ध्यान से पढ़ें और मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया है, इसके महत्वपूर्ण बातों पर आप विचार भी करें कि और पढ़ करके रट करके छोड़े नहीं, आप देखेंगे कि आपका दिमाग किस तरह से चीजों को लिंक करता चला जाएगा। तो मित्रों और भी बहुत सी क्लिपिंग्स हैं, उनकी चर्चा करने के लिए अभी वक्त नहीं है, वो आप देख लेंगे पढ़ लेंगे, बहुत सी क्लिपिंग्स को मैंने अंडरलाइन कर दिया है। फ्रेंड्स अब मैं आता हूं ईमेल पर, बहुत से मेल मिले हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी के प्रति बहुत बहुत आभार। और इनमें से कुछ दोस्तों के मैं नाम ले रहा हूं, वे हैं प्रद्युम्न मिश्रा जो मऊ उत्तर प्रदेश से हैं, अवतार सिंह ढिल्लन जो पटियाला पंजाब से हैं, बृजेश कुमार वर्मा जो सिद्धार्थ नगर से हैं, शशांक द्विवेदी जो दिल्ली से हैं, हर्षवर्धन सासाराम बिहार से हैं, संदीप पांडे विशाखापट्टनम से हैं, तनु प्रिया सिंह दिल्ली से हैं, चंद्रशेखर और नवीन कुमार, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों कल जो मुझे जितने मेल मिले हैं उनमें तनु प्रिया सिंह जो दिल्ली से हैं उनका मेल बहुत अच्छा रहा, वो बेस्ट मेल मैं मान रहा हूं। तो तनु प्रिया इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और आपके बहुत अच्छे सुखद भविष्य के लिए शुभकामनाएं। तो मित्रों इसी के साथ ही मैं अब आज के इस डेली ऑडियो को यहीं समाप्त करता हूं, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।